जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्याकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्याकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तविंद की। गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की। समवेद गौर भक्तवृंद की। समवेद गौर भक्तवृंद की। समवेत गौर भक्त वृंदे की, गुरु एंड गौरांग की। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पांचवें अध्याय का सोलह नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक लोक लोक स्वयं लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि य अर्थान समीहेता निकाम कामः अन्योन वैरह सुखलेश हेतो अनंतर दुखम च न वेद मूढ़ लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि यो अर्थान समीहेत काम निकाम कामः अन्योन वैर सुखले सहेतो अनंत दुख चना वेद मूढ़ लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि यो अर्थान समीहेत निकाम कामः अन्योन वैरह सुखलेश हेतो अनंत दुख चन वेद मूढ़ जी। ओके। अन्योन वैरा सुखले सहेतो दुख चाने लोका स्वयं दृष्टि हरे कृष्ण। श्लोक अर्थ शब्दार्थ लोकः लोग स्वयं स्वयं श्रेयसी कल्याण मार्ग का नष्ट दृष्टि जिसकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, यह जो अर्थान विषय भोग की वस्तुएं समीहेत आकांक्षा करते हैं, निकाम कामाह इंद्रिय सुख के लिए अनेक कामाक्षाओं वाला, अन्योन वैरह परस्पर ईर्ष्यालु होकर सुख लेस हेतो केवल क्षणिक सुख के लिए अनंत दुखम अपार कष्ट च भी ना नहीं वेद जानते हैं। मूढ़ा मूढ़ व्यक्ति बुद्धिहीन। अर्थ और तात्पर्य अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्थ, अज्ञानतावश भौतिकवादी व्यक्ति अपना हित नहीं समझ पाता। जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है वह भौतिक सुख की कामाक्षाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती है। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसी मंदबुद्धि व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। तात्पर्य, नष्ट दृष्टि शब्द का अर्थ है जो भविष्य को नहीं देख सकता, नहीं देख पाता। और यह शब्द इस श्लोक के में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन तो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इसी जीवन में अन्यथा अगले जीवन जन्म में मिलता रहता है। जो अल्पज्ञ हैं और जिनके पास भविष्य देखने की दृष्टि नहीं है, वह इंद्रिय तृप्ति हेतु अन्य व्यक्तियों से दुश्मनी मोल ले लेता है और लड़ता भिड़ता रहता है। इसके फलस्वरूप उसे अगले जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। किंतु वह अंधे व्यक्ति की भांति कार्य करता है जिससे उसे निरंतर कष्ट झेलना पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति मूढ़ है क्योंकि वह मात्र अपना समय नष्ट करता है और ईश्वर की भक्ति को नहीं समझ पाता। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.25 में कहा गया है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ो अहम ना भी जानाति लोकमाम अव्यय लोकमाम अव्ययम। मैं मूढ़ तथा अल्पज्ञ मनुष्यों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता, उसके लिए मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझ अजन्मा तथा अच्युत को नहीं जान पाता। कठोपनिषद में भी कहा गया है, अविद्यामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडिता मन्यमाना। अब भी कुछ अज्ञानी लोग दूसरे अंधे लोगों के पास नेतृत्व प्राप्त करने के लिए जाते हैं, फलस्वरूप इन दोनों को कष्ट उठाना पड़ता है। एक अंधा द्वारा दूसरे अंधे को खड्डे में ले जाने वाला होता है। 17 और 18 भी है, तो आज 17 और 18 वर्स भी हम देखेंगे श्लोक। तो जस्ट श्लोक पढ़ के अर्थ पढ़ूंगा मैं। कस्तम स्वयं तद अभिज्ञ विपिश्चित अविद्यामंतरे वर्तमानः दृष्ट पुनः तम सघृण कुद्बुद्धिम प्रयोजयेत उत्पद गमा यथा अंधम। अर्थ, यदि कोई अज्ञानी है और संसार पर्थ में स्थित है तो भला उसे कोई विद्वान दयालु तथा आत्म ज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक अस्तित्व में और अधिक उलझने के लिए क्यों कर प्रवृत्त करेगा? यदि कोई अंधा व्यक्ति विपरीत राह पर जा रहा हो तो कौन सा सज्जन पुरुष होगा जो उस संकट के पथ पर उसे और आगे जाने देगा? वह इस विधि की अनुमति क्यों देगा? कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा। श्लोक संख्या 18। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात् दैवं न तत् स्यात् न पति तत् च स्यात् न मोचयेत् स समुपेत मृत्युम्। अर्थ, जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनाना चाहिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु भगवान ऋषभ देव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने आप को बचा नहीं पाता। त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। केवल श्री भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत वेत्ति तत्वतः। इतिहास में भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए प्रत्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। श्री शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा, तो श्री शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है। फलस्वरूप परमेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता 7.27 में उपदेश दिया है कि यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जिहोषि ददात्सि यत् यत् उपश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो कुछ भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों का त्याग को त्याग दिया, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह उसे जन्म मरण के आसन्न संकटों से उबार नहीं सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न शस्यात्। दैवम शब्द देवता या अपने अधीन अर्चना करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पिता, पति, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर भगवान ऋषभ देव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वे अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु से उबार सकें। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसा गुरु अपने शिष्य का, पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सभी उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित्व को जन्म मरण के चक्र से उबारा ना जा सके। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां नितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च। नमाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्लोक संख्या 16 अध्याय भगवान ऋषभ देव जी की अपने पुत्रों को शिक्षा उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ हम ये जो सीरीज चल रहा है उसमें हम देखते हैं कि भगवान ऋषभदेव जो राजा नाभि के पुत्र हैं पुत्र बनकर आए हैं वे अपने 100 पुत्रों को ब्रह्मवर्त देश है वहाँ पर वे बैठ करके उस पावन क्षेत्र में सारे प्रजाओं के साथ जो उनके 100 पुत्र हैं उनको उपदेश देते हैं। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि इस संसार के लोग जो अपनी इंद्रिय भोग तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए इस संसार में आ गिरे हैं उनको कैसे वे वापस अपने धाम वापस लेके चलें। तो इसके पीछे यही मानसिकता है कि जैसे एक पिता का बेटा अगर इधर उधर भाग जाए तो पिता की सारी चिंता रहती है कि कैसे मैं अपने बेटे को घर पे लाके सुनियोजित रूप से उसे व्यवस्थित कर दूं ताकि वो बाहर की ठोकरें ना खाए और घर में प्रेम पूर्वक रहे। तो उसी प्रकार जो हमारे परम पिता भगवान श्री कृष्ण हैं वे समय समय पर अवतरित होते रहते हैं और अपने अंश और कला को भेजते रहते हैं और अपने अवतारों की श्रृंखला में ही उनका एक अवतार है भगवान ऋषभदेव का जिसमें वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति जो इस संसार सागर में गिर चुका है मनुष्य जो उसको यह शरीर मिला है उसके लिए यह उचित नहीं है कि वह इंद्रिय तृप्ति में लगे। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो कुकर और सुकर के लिए भी उपलब्ध है। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगने से व्यक्ति का सारा ध्येय सारा प्लान सारा एम ऑफ लाइफ जो भगवान की प्राप्ति होना चाहिए था वह भूल करके वह क्या हो जाता है विषय भोग परिवार देश और जो भी सेल्फिश दायरा में जो कुछ भी आ जाता है व्यक्ति काफी सेल्फिश होके वह व्यवहार करने लगता है कार्य करता है और इस तरह से करता हुआ अपने आप को प्रभुपाद बोलते हैं संसार सागर में कूद पड़ता है वो। और यह सागर कैसा है? जैसे सागर में हम देखते हैं कि एक के बाद एक लहरें उठते रहती हैं, तो वैसे ही हमारा जन्म मृत्यु होता रहता है। अभी कोई बोले कि संसार की सागरें कोई गिन लेगा, कि जो लहरें होती है उसको कोई गिनना चाहे तो उसको मूर्ख बोलेगा। कोई भी व्यक्ति बोलेगा अरे मूर्ख है, सागर में समुद्र में तो लहरें अनंत आती है और अनंत रूप से बहते रहती है। तो उसी प्रकार से हमारा जन्म मृत्यु भी वैसे ही उस प्रकार से होता रहता है। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो लहर है जो चल रहा है, इसको भगवान बोलते हैं, भगवान ऋषभदेव की आप रोक सकते हैं। जीवात्माओं को बोलते हैं अपने पुत्रों को इंगित करके कि हे जीवात्माओं, हे पुत्रों, तुम इन सारे जन्म मृत्यु के चक्र को रोक सकते हो, इस संसार सागर से बाहर निकल सकते हो। तो हमें क्या करना होगा उसके लिए? तो उसके लिए आत्मा का कल्याण करने वाले सारे कार्य अगर हम करते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु को रोक सकते हैं। और भगवान बताते हैं कि जो हमको ये जो शरीर मिला है, ये जो शरीर है, आप किसी भी दूसरे प्राणी हैं, जितने भी सारे प्राणी हैं, जानवर हो गए, जो जलचर हैं, जो नवचर हैं, जो स्थलचर हैं, इन सारे प्राणियों में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है और जो सबसे ज्यादा विवेकशील है, सब कुछ करने में समर्थ है, वो मनुष्य ही है। भले चीता जोर से दौड़ता हो और गिद्ध कितना भी तेज उड़ता हो और चूहा अगर पृथ्वी के अंदर बिल बना सकता है बहुत अच्छे तरीके से, चींटियां बहुत अच्छे से ये कर सकती है, घरौंदा बनाते हुए अंदर में बहुत सारा अंदर महल जैसा बना सकती है वो, ये सब सारा चीज अगर मनुष्य भी उसको ही फॉलो करने की कोशिश करेगा कि हम कितना अच्छा से उड़ सकते हैं, कितना अच्छा से देखो हम समाज में स्टाइल में बहुत सारे भवनों के साथ और परिवार वालों के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अट्टालिकाओं में जिसको बोलते हैं कि स्काई स्केपर बिल्डिंग्स में हमारा फ्लैट्स है, एक फ्लैट दिल्ली बॉम्बे मेट्रो सिटीज में फ्लैट्स हैं हमारे, तो ये सब सारे चीज ऑलरेडी किसी बर्ड्स चिड़िया या फिर डॉग्स सबको अवेलेबल रहते हैं। वो अपने संतुष्टि के हिसाब से किधर भी रह सकता है, किधर भी जाके बच्चे पैदा कर सकता है और किधर भी उड़ सकता है अपने, और किधर भी लड़ाइयाँ कर सकता है। तो यह जो समाज हम जो निर्माण कर रहे हैं वो समाज कैसा हो जाता है, जिस प्रकार से कुकर और सुकर, डॉग्स एंड पिग्स जैसा जो समाज है वो समाज का निर्माण होता है। नहीं विश्वास है आपको तो समाचार पत्र या फिर जो भी न्यूज़ बुलेटिन और या फिर गूगल सर्च करके न्यूज़ पे सर्च कीजिए, आपको आध्यात्मिक न्यूज़ ना के बराबर मिलेगा। चोरी डकैती रेप मर्डर ये सब भर भर के मिलेंगे। और भी बहुत सारे जो हॉलीवुड बॉलीवुड के फिल्म्स के सारे न्यूज है वो भी भर भर के मिलते हैं। तो ये सब सारे न्यूज क्यों क्यों दिए गए हैं? क्योंकि जो जीवात्मा है उसको इंद्रिय तृप्ति करने में ये सब सारे न्यूज उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो डे बाय डे, नहीं तो व्यक्ति उदास हो जाएगा, वो बोले क्या करें, हाँ हो गया, अभी विवाह हो गया, अभी शादी हो गया, अभी क्या करना है, हाँ जॉब करके भी आदमी परेशान हो जाएगा, उदास हो जाएगा। तो ये न्यूज उनको इंथुजियाज्म देते रहते हैं कि हाँ ऐसे करो, ऐसे तरीके से भवो, ऐसे इस तरीके से आपको पॉन्स का साबुन लगाएंगे तो आपको इतना गोरा चेहरा मिलेगा, आप अगर ये प्लान लेते हैं तो आपको 10 दिन का फ्लाइट, 10 दिन का छुट्टी के साथ फ्लाइट में इधर से आप उधर जा सकते हैं, किसी भी देश भ्रमण कर सकते हैं। ये सब सारा दिखाते हैं और एड्स के माध्यम से, आजकल मोबाइल है उसमें एड्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कितना लोग उसमें खुशी का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति उस चीज को करने लगता है तो क्या होता है, एक के बाद उससे रिलेटेड दुख बढ़ने लगते हैं और वो दुख किसी को बताता नहीं है और खुशी बार बार दूसरे को सुनाता रहता है। सब लोग यही कर रहे हैं तो वो भी यही करता है और इसमें ही अपना प्रगति समझ रहे हैं। पर जब बूढ़ा होता है तो उसकी इच्छाएं, जिस प्रकार से मोबाइल में वो हर दिन देखता रहता है एक एक कि व्यक्ति ऐसे खुश हो रहा है, ऐसे खुश हो रहा है, हाँ समाज ऐसे खुश हो रहा है, देश ऐसे प्रसन्न हो रहा है, वही करता रहता है। बुढ़ापे में वही बार बार दोहराता दोहराता वही इच्छा रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। और जिस प्रकार से हम ध्यान में नहीं रखता है, हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि कब बारिश आ गई, कब गर्मी आ गया, कब जोर से आंधियां चलने लगी। हमको लगता है ये तो ऋतुएं बदलती है और अलग अलग ये मौसम बदल रहा है, ये तो होता ही रहता है। तो उसी प्रकार से ये सब जो सृष्टि का सिस्टम है, उसी प्रकार से जो होता रहता है, ये भी हो जाता है कि हमारी जो इच्छा थी उसके अनुसार से हमें प्रकृति सृष्टि उस हिसाब से वो शरीर दे देती है। नेक्स्ट लाइफ मनुष्य के बाद इन सारी मोबाइल्स को देखने के बाद जो इच्छाएं हो जाती है वो क्या हो जाती है, हमको मौज करना है, मजा करना है, हाँ मांस खाने की इच्छा है, मीट मछली खाने की बहुत इच्छा है। तो सृष्टि इसमें भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है, उसमें सृष्टि जो माया देवी है वो क्या करती है, उस प्रकार का शरीर प्रदान कर देती है। तो इतना विवेकशील जो मनुष्य शरीर मिला उसको कहाँ यूज कर दिए हम, मतलब किसी के पास हवाई जहाज है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, उसने क्या किया, वो अपना पैर काट के ही हाथ, पैर और हाथ अपने हाथ से काटा और लुढ़क लुढ़क के या फिर घसीट घसीट के एक देश से दूसरे देश लहूलुहान होके जा रहा है और फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है, बीच में चील और गिद्ध उसे खा जा रहे। ये ऐसा ही वृत्तांत हो गया कि मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो एक बार एक भक्त को एक माताजी पूछ रही थी कि आप लोग इस्कॉन वाले लोग आप बोलते हैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे, इसलिए भगवान की भक्ति करो और भगवान का नाम स्मरण करो, जप करो, कथा कीर्तन में आओ, इतना सब हम कर रहे हैं कर रहे हैं, अगर हमको पता चले कि ऐसा कुछ था नहीं तो हम, बाहर के लोग तो कुछ भी बात करते हैं, किधर भी जाते हैं और हम सब कुछ छोड़कर इधर जप कर रहे, कथा कर सुनने में आते हैं, हम वो सब नहीं कर पाते और ये सब करते हैं तो हमने जीवन में कुछ किया नहीं ऐसा लगता है हमें। तो भक्त ने वो माता जी से कहा कि देखिए, प्रभुपाद जी से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा सोच लीजिए, ऐसा मानिए कि आप लोग इतना इतना मंदिर बना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सुबह चार बजे जगकर मंगल आरती करते हैं, रात तक आप भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमेशा सेवा सेवा सर्विंग सर्विंग सर्विंग, आपको पता चले कि लास्ट में कृष्ण नहीं है और ऐसा कुछ है नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत नहीं है, तो आप लोग का क्या होगा। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुनहरा उनको आंसर दिया, गोल्डन आंसर बोलते हैं उसको, बहुत फेमस आंसर जो दिया वो ये था कि देखिए, सुबह सुबह व्यक्ति को उठना उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठकर हम व्यक्ति को प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है, तो हम मंगल आरती में आकर आते हैं और भगवान का कीर्तन करते हुए डांस करते हैं, तो हम प्रसन्न भी हैं और डांस भी कर रहे हैं। फिर तीसरा, व्यक्ति अगर हंसता रहता है तो बहुत सारी बीमारियों से वो खत्म, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो यहाँ पर प्रसन्नता के साथ जब व्यक्ति हंसता रहता है, गुरु पूजा में कीर्तन करता है और व्यक्ति हंसता है भी है, प्रसन्न रहता है, और सारे समाज में जितने भी बच्चे बूढ़े स्त्रियां सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद फिर जो व्यक्ति अगर कथा कीर्तन सुनता है तो वो कला संस्कृति मनुष्य सभ्यता का एक अंग है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो नीरस हो जाएगा। तो ये जो हर रोज जो बूस्टर डोज मिलता है कि आप कीर्तन किया, आप हंसे, आप सारे समूह में आके एक गीत को गाए, प्रभुपाद गीत, प्रभुपाद का गुरु पूजा किए, फिर संसार दावानल गाए, तुलसी वर्शिप करते हैं, उसके बाद नरसिंह आरती, उसके पहले नरसिंह आरती करते हैं। तो ये सब सारे को समूह में आकर जब आप करते हैं तो आपको जो मनुष्य एक क्या बोलते हैं सामाजिक जीव है, तो वो डिजायर फुलफिल करता है। ये मोबाइल हमको क्या करता है, हमको सारे लोगों से अलग कर देता है। हमको लगता है कि हमको मेरे हाथ में मेरी सारी खुशी मैं खुद अभी कंट्रोल कर रहा हूँ। ये पॉइंट दबा, ये चैनल पे गया, वो चैनल पे गया, इसको देखा, उसको देखा, तो मैं खुश हो गया। पर उसको थोड़े देर बाद, इतने करने के बाद अंदर से भगवान आनंद नहीं देते, दुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जब दूसरे किसी व्यक्ति से व्यवहार करता है तो झगड़ा कर लेता है और फिर परेशान हो जाता है कि क्या किया मैंने। या इसी प्रकार अकेलापन में व्यक्ति जीता रहता है, तो इसमें और ज़्यादा उसको निगेटिविटी बढ़ता रहता है और अंदर में उसे एक खालीपन हमेशा महसूस होता है। तो एक खालीपन भरने के लिए श्रील प्रभुपाद ने यह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम का बूस्टर डोज दिया है। ये केवल एक 4 घंटे का जो मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो भी व्यक्ति भक्ति में आकर, वो पूर्ण दिन भर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। 2 घंटे में भगवान के नाम का जो जप है, ये केवल भगवान के नाम का जो जप है वही इतना शक्ति दे देता है कि दिन भर में होने वाले अनेक प्रकार के दुविधाओं परेशानियों के बाद भी व्यक्ति प्रसन्न रहता है, हृदय प्रसन्न रहता है, प्रसन्नचित रहता है। क्योंकि उसे पता है कि मेरे पीछे मेरे पिता, मेरे जो परम पिता भगवान श्री कृष्ण का हाथ मैंने पकड़ा है। एक बार प्रभुपाद जी जब बताते हैं अपने शिष्यों कि एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था तो मैं अपने पिताजी के साथ था, उस समय टीटी मेरे पास आया और उसने टिकट मांगा, बोला टिकट, तो मैं डर गया। फिर मैं थोड़ी देर बाद मैं देखा, अरे मेरे पिताजी मेरे पीछे हैं, और फिर मुझे डर नहीं लगा। और पिताजी ने बोला, यस तुम ये हमारे साथ है। तो ये जो भावना है कि हमारे साथ भगवान है, ये कृष्ण भावना अमृत का एक अहम हिस्सा है। ये मेन चीज है जिसके कारण भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। वैष्णवों की प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। और उसको ध्यान में रखकर व्यक्ति जब सेवा करता है तो भगवान हृदय से उसे प्रसन्नता देते हैं। ये जो प्रसन्नता और आनंद की चाबी है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि मोबाइल का ये हम टॉपिक देख लिया, ये मजा कर लिया, चार्ली चैपलिन का ये शो देख लिया तो मैं खुश। हंसना इज नॉट इक्वल टू प्रसन्नता। आप हंस रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि आप प्रसन्न हैं। अदरवाइज जो पागल घर होता है उधर भी बहुत सारे लोग हंसते हैं पर वो प्रसन्न नहीं रहते। लोग जो व्यक्ति बुद्धिमान है उनको उन पे तरस आता है कि ये लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। तो एक बार मैं श्याम पेरेपुर से पूछ रहा था कि प्रभु जी खाना खाते हैं तो हमको भूख लगता है तो हमको पता चलता है अभी खाना खाते हैं और हमको हमारा तृप्ति हो जाता है, लेकिन आत्मा की तृप्ति कैसे हो रही है, वो उसका मीटर कुछ डायनेस दिखता नहीं है। तो उन्होंने बहुत सुंदर आंसर किया कि देखिए, हम जो कुछ भी झगड़े करते हैं, हम जो कुछ भी दुखी रहते हैं या चिंतित रहते हैं, ये सब कुछ ये आत्मा का भूख है जो बता रहा है कि आपको आध्यात्मिक संग, आध्यात्मिक भक्तों का संग लेना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है, जप करना है। ये जो आध्यात्मिक कार्य, जो भक्ति के कार्य हैं, इनको बार बार करने से आत्मा क्या होती है, बलिष्ठ होती है, आत्मा को खुराक मिलता है। तो ये सब कार्यों को प्रतिदिन करते रहने से आत्मा प्रसन्न रहती है और जिसकी आत्मा प्रसन्न है वो कभी दुखी नहीं रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा प्रोसेस दिया है कि व्यक्ति सदा प्रसन्न रह सकता है। तो ऋषभ देव अपने उपदेशों के माध्यम से ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम इस लाइफ में बहुत सुंदर तरीके से भगवान की भक्ति में लग सकते हैं, और इंद्र तृप्ति को साइड में रखकर उसके बारे में विचार ना करके अगर हम भगवान की भक्ति करने का विचार करते हैं तो भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाती है। एक हमारे बगल में पेड़ है घर के बगल में, तो उसमें बहुत अच्छे पत्ते उत्ते आते रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उस पर कलर करेंगे तो और अच्छा डिजाइन बनेगा, तो सोचते हैं कि उस पर थोड़ा कलर उलर करके देखते हैं। तो एक दिन थोड़ा ऐसा ट्राई किया कलर करने का उसको, तो वो कुछ समय बाद मुरझाने लगा। तो वो पेड़ निमाई लीला प्रभु का है, तो हमको वो बोलते रहते हैं कि भैया इसमें कभी मैं बाहर गया हूँ इसे पानी दे दिया करना। तो ऐसा मुरझाया हुआ था गर्मी के कारण, तो जैसे ही पानी दिया और एक घंटा बाद जब ऑफिस से आया तो देखा कि पूरा एकदम सब खिल गया है एकदम। तो बिल्कुल यही होता है हमारे साथ कि जैसे ही कृष्ण अनुपस्थित होते हैं हमारे जीवन में हम मुरझा जाते हैं, हम उदास रहते हैं, हम इधर उधर सोचते रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ये सब सारे जो समाचार में और जो न्यूज़ हॉलीवुड बॉलीवुड में जो दिख रहा है ये केवल कृष्ण भगवान अनुपस्थित हैं उधर, इसलिए वो दिख रहा है। कोई भक्ति सिद्धांत श्रुति ठाकुर से एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये जो समाचार पत्र निकाल रहे हैं आपके पास है इतना न्यूज कि आप इतना पत्र समाचार आप निकाल सकते हैं? बोलते हैं कि एक नहीं दसों दस ऐसे बड़े समाचार पत्र हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत और जो भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का 3/4 है। तो इतने सारे न्यूज है, पूरा भागवतम है, भगवद गीता, इतने सारे शास्त्र हैं, पुराण है, उनके पास भौतिकवादी लोगों के पास क्या है? एक ही न्यूज है, स्त्री पुरुष का प्रेम के ऊपर जो वासना है उसको ही बार बार दिखाते रहते हैं, और उसका जो विभत स्वरूप है लूट चोरी डकैती ये सब अलग अलग रूप में प्रकट होता रहता है, कभी फिल्म के माध्यम से, कभी गाने के माध्यम से। तो इस्कॉन में आने पर ये चीज हरेक ने अनुभव किया है कि पहले जो चल रहे थे हमारा पहले जो हमारा जीवन चल रहा था वो आंख बंद करके, यहां पे बोलते हैं प्रभुपाद नष्ट दृष्टि जिसकी हो जाती है, जो फ्यूचर देख नहीं सकता वो ऐसा जो सामने आ रहा है उसे करो। माता पिता अपने बच्चे को बताते हैं, बोलते हैं फ्यूचर अपना बनाना है कि नहीं, इधर आओ बताते हैं कैसे बनाना है। इस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई करेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, और अच्छे से आप अगर ये कर पाते हैं तो आप इंट्रेंस एग्जाम अगर क्रैक कर पाते हैं तो आप US जा सकते हैं, UK जा सकते हैं, और उधर से रिटर्न होने के बाद आपका लाइफ सेटल है। पर जो लोग ऑलरेडी कुछ फ्रेंड्स हैं वो सेटल होकर के इधर आए हैं, मतलब जो मेरे फ्रेंड भारत वापस आए, मैं उनको देखता हूँ वो वही काम करते हैं जो सिंपल आदमी भी जो करता है, वो भी वही काम कर रहे हैं, कुछ नया चीज नहीं किया उन्होंने, वो भी खा पी रहे हैं अच्छे से, वो भी बस 2-3 गाड़ियां ज्यादा है, 1-2 बंगले बना लिए हैं, और समय समय पे सब लोग वापस इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा जो होती है उसकी उनकी जो पार्टी चलती है वो पुराने दिन अपने कॉलेज के याद करते हैं, बियर और रम वही पीते रहते हैं। तो इससे क्या मिल गया आपका? बुढ़ापा आ गया, बच्चे लोग अभी गाली दे रहे हैं क्योंकि आपने जीवन कैसा जिया, भौतिकवादी तरीके से जिया, बच्चे गाली देते हैं, घर से बाहर निकालते हैं, बच्चे को कोसते कोसते उनका देहांत होता है। तो इस तरह का जीवन नहीं चाहिए, ये प्रसन्नता भरा जीवन कृष्ण भावना अमृत संग ही है। तो ये जो नष्ट दृश्य है इसको दृष्टि कौन प्रदान करेगा? इतने सारे इस दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कि जो कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति अगर अंधा है और गड्ढे में गिरने जा रहा है तो जिसकी आंखें हैं वो क्या करता है, वो दौड़ के उसको बचाता है। आए दिन ट्रेन में वीडियोस कभी कभी आते रहते हैं, व्यक्ति ट्रेन की पटरी पे गिर गया और दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उसे उठाया और उठा करके बचा लिया और उसको लाइक्स या फिर कितने करोड़ों लाइक्स आते हैं, देखते हैं लोग और उसकी सराहना करते हैं और उसे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलता है बचाने वाले को। तो यही पुरस्कार कृष्ण भी देना चाहते हैं कि हम जो आंख हमारा बंद है, जानबूझ के जन्म मृत्यु के सागर में बार बार लहरें बनते जा रहे हैं, हम एक जन्म कुत्ता का लिया, एक जन्म भेड़ी का लिया, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं कि एक दफा ये बन जाओ, एक दफा ये बन जाओ, क्या मिला उससे? आप अगर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिलियनर भी हैं, पर अगर भगवान की भक्ति नहीं की तो दूसरा जन्म जो है कुत्ता और सुकर का आपका वेट कर रहा है। वो बस आपका यह शरीर जैसे छूटेगा, आप किसी जो मादा मादा जो डॉग्स है उसके उसके गर्भ में आप प्रकट हो जाओगे, उसके उसके अंश के रूप में प्रकट होंगे। बहुत सारे सिबलिंग्स एक साथ प्रकट होते हैं डॉग्स के, तो उसमें वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी प्रकट हो जाता है। इसका उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं किस प्रकार से एक व्यक्ति होता है और नारद मुनि एक बार उनके पास आते हैं और बोलते हैं, उसका नाम कैलाश होता है, तो बोलते हैं कैलाश अभी आपको मनुष्य जन्म है, बहुत अच्छा अवसर है, अभी अवसर है भगवान की भक्ति करने का, आओ हमारे साथ हरिद्वार चलो और उधर हम भगवान की भक्ति में संलग्न होंगे, भक्तों के संग में रहेंगे। कैलाश बोला, अरे अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, जैसे ही विवाह हो जाता है उसके बाद मैं ये करूँगा। तो विवाह हो गया, विवाह होने के बाद फिर आए नारद मुनि, बोले अभी मेरे बच्चे हो गए हैं, अभी उनको बड़ा करूँगा, के उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। फिर नारद मुनि चले जाते हैं, वापस कुछ समय के बाद आते हैं तो कैलाश के पास आते हैं, कैलाश अभी बूढ़ा हो गया है, बोलता है ये मेरे पोते जो हैं उनको पता, मेरे को इन बेटों को पता नहीं कि इनको कैसे बड़ा करना है, ये कुछ भी गलत कर रहे हैं तो इनको सिखाना है मुझे, तो मैं इनको सिखा करके आपके पास आता हूँ। तो फिर नारद मुनि वापस से चले जाते हैं, फिर कैलाश को खोजते हुए नारद मुनि आते हैं उसके जहाँ पे रहता था और वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं कुछ, तो उनसे नारद मुनि पूछते हैं यहाँ पे कैलाश था वो कहाँ गया, तो बोले उसको मरे हुए बहुत जमाना हो गया। बोले अच्छा ठीक है, हम तो बोल रहे थे आ जाओ अभी मर गया अभी क्या। तब तक मैं अचानक आवाज़ सुनाई देता है, वो वो नारद मुनि मैं कैलाश। अरे कैलाश क्या हुआ? मैं डॉग्स हो गया हूँ, अभी डॉग हो गया हूँ, अभी मैं इस घर की, मैंने घर इतना मुश्किल से बनाया, इसका मुझे रखवाली करना है, ये बच्चे लोग, ये मेरे बच्चे लोगों को पता ही नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं, मैं रहता हूँ जिस बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देता हूँ, चोरी करना चाहते हैं सब लोग। तो बोलता है कैलाश तुम चलो चलो यहाँ से, तुम चलो भगवान की भक्ति करो। तो नहीं नहीं मुझे अभी इनकी रक्षा करनी है। तो ठीक है कैलाश बोल करके ऐसे नारद मुनि चले जाते हैं, मैं बाद में आऊँगा। फिर कुछ समय बाद आते हैं, वो घर वालों से पूछते हैं, वहीं पे आते हैं, कैलाश क्या हुआ? कैलाश यहाँ पे एक डॉग था, एक कुत्ता था, वो कहाँ गया? तो वो तो बहुत पहले मर गया। अच्छा ठीक है, फिर जाते रहते। फिर अचानक उनको सुनाई देता है, नारद मुनि कौन? तो एक सर्प दिखाई देता उनको, मैं कैलाश। तो नारद मुनि बोलते हैं, अरे तुम सर्प हो गए? हाँ, मैंने अपना सारा धन इस पेड़ के नीचे छिपा के रखा है और अगर इसकी रक्षा नहीं किया तो कोई इसे चोरी करके ले जाएगा। तो नारद मुनि बोलते हैं कैलाश तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उनके बच्चों के पास, पोतों लोग, पोते पर पोते के पास जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें पता है इस पेड़ के जड़ में एक सांप रहता है जो तुम्हारे तुम्हारे लोगों को डस सकता है, तुम्हारे घर के परिवारजनों को, देखो। तो जैसे ही उनको पता चलता है, उनके पोते पर पोते कैलाश के उनको जाते हैं और डंडा लेके उसे मारना शुरू करते हैं और पूरा अधमरा हो जाता है। और फिर उसे समझ में आता है और वो बोलता है नारद मुनि, नारद मुनि मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। फिर नारद मुनि आते हैं, उसे बचाते हैं और फिर उसे अपने साथ लेके जाते हैं। तो यह जो भाव है, यह एक गुरु का कर्तव्य है, एक पति का कर्तव्य है, एक माता का कर्तव्य है, एक देवता, देवता बोला गया है। तो ये सब सारे जो कार्य हैं जिनके प्रति लोग आश्रित रहते हैं, जैसे पिता का आश्रित कौन है? पुत्र। पुत्र पिता पर आश्रित रहता है। पुत्र को अगर बुला करके बोलेंगे बेटा इधर आओ, अच्छे से जैसे पेट भरे वही पाठ वही कार्य करो, तो ये पिछले 200-300 साल से अंग्रेजों का दिया हुआ ये है और लोग इसे बड़े चाव से करते हैं। जीवन का एम क्या है? पढ़ लिख करके एक ऐसा व्यक्ति बने कि जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण अच्छे से चले, और बस उतना ही करना है। इतना ही कर लिया तो बहुत है। गांव जाओ तो बोलो क्या कर लिया, अरे उसका बड़ा बड़ा घर बना लिया है, उसके इतने खेत हैं, उसका इतना ये है, उसने ये भी कर लिया, उसने ये भी कर लिया। इसको ही इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि जैसे कि संपत्ति को अपने पास में रखना, आजकल लोग वह उसका उसको खर्च भी नहीं करते हैं, बोलते हैं है इतना ना, बीमार पड़ गए हैं तो भी खर्च नहीं करेंगे, बोलेंगे रहेगा तो काम आएगा। अरे किसके काम आएगा? तो गांव के लोग बहुत सारा इस टाइप में उनकी मेंटेलिटी होते जा रही है कि जितना ज्यादा संपत्ति है, घर जमीन है, उसको वो विकास समझते हैं। तो जो सही जो मार्गदर्शक होते हैं, जो सही मार्गदर्शक होते हैं वो सही मार्ग को दिखाते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति, ऐसे पिता को त्याग देना चाहिए जो अपने आश्रित पुत्रों का भला नहीं कर सकता। भला क्या है? जो सुनीति माता जी ने ध्रुव महाराज को बताया कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी परिस्थिति आते रहती है जब हमें आलोचना और लोग धुतकार देते हैं। तो जो सुरुचि थी, जो ध्रुव महाराज की स्टेप मदर थी, उन्होंने ध्रुव महाराज को धुतकार दिया कि तुम अपने पिता पे के गोद पे नहीं बैठ सकते, अगर तुमको गोद में उनके जाना है तो तुमको पहले मरना पड़ेगा और फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर तुमको मैं अपने युवराज के रूप में प्रतिष्ठित करूंगी। तो ये जो क्षत्रिय ध्रुव था उसको सहन नहीं हुआ और वो अपनी माता के पास गए, सुरुचि के पास। उन्होंने अपना दुखड़ा रोकर सुनाया, लेकिन सुनीति ने उन्हें ये नहीं कहा कि हाँ ऐसा हुआ है, अभी क्या कर सकते हैं, आगे से तुम्हें कुछ बदला लेना है, ये करो ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला कि देखो, आप अगर भगवान के पास जाते हो, भगवान की भक्ति करते हो, भगवान के लिए तपस्या करते हो, तो भगवान वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जो आप चाहते हो। तो ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि जो मेरे पिताजी जो उत्तानपाद है ना, और जो उनके जो पिताजी ब्रह्मा जी है ना, उनसे भी मेरे को बड़ा राज्य मिले, ये छोटा सा गद्दी मैं लेके क्या करूंगा। ऐसा इच्छा लेकर गए, वापस से नारद मुनि आए, बोले बच्चे घर जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं गुरु का क्या कार्य है। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति सही में भगवत धाम जाने का, भगवान के प्रति जो इसकी छोटी सी सेवा करने की चिंगारी, उसको इस तरीके से जलाते हैं, इस प्रकार से करते हैं कि वो भक्ति का पूर्ण रूप से एक दीप्त ज्वालामय आग बन जाता है, और उस आग में अपने सारे अनर्थों को को छल भूल भुना करके व्यक्ति भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का नारद मुनि उन्हें शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और उसको फॉलो करते हुए ध्रुव महाराज को अपने परम पिता ब्रह्मा से तो बड़ा राज्य मिलता ही है, उन्हें भगवत धाम भी मिल जाता है। इस धाम में जो ध्रुव तारा है, ये ध्रुव महाराज वहीं के राजा हैं और उसके बाद वो भगवत धाम जाएंगे। तो आगे वर्णन आता है किस प्रकार ऐसा पिता जो अपने पुत्र को गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, जैसे कि हिरण्यकश्यपु अपने पिता अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को वो को शिक्षा देते थे कि आप राजकाज करो, आप इस प्रकार का कुछ भी मत करो, भगवान की भक्ति में क्या रखा है और आप ये इस तरह के गलत सारे चीज क्यों सीख लिए हो कि भगवान की भक्ति करना है, विष्णु परम पद हैं, उनको प्राप्त करना है, ये तो गलत है, कुछ लोगों ने आपका दिमाग भ्रमित कर दिया है। पर जो गुरु थे प्रहलाद महाराज के नारद मुनि, उनसे जो नारद मुनि ने सीखा है वो पूर्ण रूप से उनके हृदय में बोलते पत्थर का लकीर जैसे अंकित हो चुका था। वो पिता के इस सारे बातों को नहीं मानते हैं, वो केवल इतना बोल सकते थे हाँ पिता आप जो बोलते हो, पिताश्री आप जो बोलते हो ठीक है। तो उन्हें वे सब सारे कष्ट नहीं भोगने पड़ते जो 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 सोचने से भी हमें डर लगता है। अगर हमको पता चले कि हमें एक सांप की कोट सांप से भरे हुए कोठरी में सर्प से भरे हुए कोठरी में फेंक दिया जाएगा, इस दिन फेंका जाएगा, तो वो दिन आने से पहले भैया तुम्हारा क्या शर्त है वो बोलो, मुझे उधर गिरना नहीं है, हम ऐसा सोचेंगे। या फिर हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा या भाले से मारा जाएगा या पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया जाएगा, तो हम वो सारे जतन करेंगे जिससे हम मृत्यु से बच सके। तो ये सब सारी चीजें हमारे साथ नहीं होंगी लेकिन भक्त प्रहलाद महाराज के साथ हुई। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम क्या बताना चाहता है कि इन सारे परिस्थितियों में, कठिनाई भरी परिस्थितियों में भी जो शिष्य है उसने अपने गुरु के शिक्षाओं को छोड़ा नहीं, कि हमेशा वह भगवान का कीर्तन और जप करते रहे और पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति ली, जो कि भक्ति का प्रथम अंग है और सबसे अहम अंग है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देता है तो वह लोग बोलते हैं कि अरे सब कुछ भगवान को दीजिए, तुम तो भिखारी हो गया। पर ऐसा बलि महाराज के साथ तो नहीं हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में तात्पर्य में कि बलि महाराज के जो गुरु हैं, बलि महाराज ने उनको ही त्याग दिया। क्यों त्यागा? अरे वो क्या बता रहे हैं, ये जो वामन है ब्राह्मण जो आया है, ये तीन डग में तुम्हारा पूरा पृथ्वी तुम्हारा पूरा साम्राज्य ले लेगा, पृथ्वी ले लेगा और जो तुमने स्वर्ग पर जो शासन किया है वह भी छीन लेगा। तो बोले ये कैसे छीन लेगा? अरे ये तो स्वयं भगवान है, शुक्राचार्य को पता है ये भगवान है, बता रहे। अभी जैसे ही बलि महाराज को पता चलता है कि ये स्वयं भगवान है तो भगवान को अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो शुक्राचार्य बोलते अभी तक आपने जल से जलांजलि देकर आपने शपथ नहीं लिया है कि मैं आपको तीन डग दे रहा हूं, आप मुकर जाओ। तो बलि महाराज बोलते हैं नहीं, मैं आपको त्याग दूंगा लेकिन भगवान मेरे पास आए हैं कुछ मांगने के लिए, उसे जरूर दूंगा। और यह विश्वास उनका भक्ति को दृढ़ करता है। तो भक्त जो होता है भगवान को अपना सर्वस्व देना चाहता है। तो तीन भगवान त्रिविक्रम रूप लेते हैं और पूरा एक एक पग से पूरा पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरा पग से पूरा यूनिवर्स नाप लेते हैं, उनका पूरा स्वर्ग लोक खत्म हो जाता है। तीसरा पग बोलते हैं भगवान किधर रखें, तो बलि महाराज बोलते हैं हे भगवान आपके श्रीचरण मेरे सर पर रखें। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि बलि अभी अभी तुम अभी तुम तुम्हारा क्या होगा। तो उस समय उनकी वाइफ विंध्यावली रहती है, वो बताती है कि हे भगवान ये बलि महाराज अपने आप को पूरे संसार का राजा समझता है जबकि इसका तो कुछ है ही नहीं, फिर भी अपने आप को बोलता है कि मैंने सब कुछ अर्पण किया। तो भगवान के भक्त प्रहलाद महाराज का जो घर है वहां पे भगवान के भक्त हुए हैं, विरोचन हुए हैं, बलि हुए हैं, ऐसे ऐसे शुद्ध भक्त हुए। और वो लोगों ने जब भगवान की भक्ति की है, भगवान अपने भक्त बलि महाराज की भक्ति कितना किस स्तर पर है वह दिखाने के लिए भगवान वहां आते हैं। और भगवान बोलते हैं, भगवान वामन देव की, मैं हे बलि, मैं आपके यहाँ द्वारपाल के रूप में रहूंगा, आप सुतल लोग जाइए जो स्वर्ग लोग से भी हजारों गुना वैभवशाली है। तो कुछ घटा नहीं, सुदामा का कुछ पोहा देके घटा नहीं, बलि महाराज को पूरा विश्व समर्पित करके भी उनका भी कुछ घटा नहीं। तो भक्त जो होता है भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करता है, और भगवान ऐसे भक्तों के लिए वो स्वयं बिक जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बिक गए ना भगवान, या उनके यहाँ पर द्वारपाल बन गए। तो वहां पर उन्होंने द्वारपाल बने, भगवान की सदा सेवा अर्चना पूजा करते रहे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समय 5 मिनट सॉरी। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि पति बहुत सारे कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पति का भी त्याग कर दिया जो कृष्ण को सेवा करने से मना कर रहे थे, और माता का भी त्याग किया। कुछ भक्तों ने माता का भी त्याग किया जिन्होंने भगवान की सेवा करने से मना किया। जैसे हम देखते हैं कि भरत महाराज, जो भगवान भरत जी राम जी के छोटे भाई, जो भगवान राम की सेवा अपने जीवन का सर्वस्व समझते थे, कैकेयी बोलती है राम राजा क्यों बनेगा, तुम बनो और इससे 14 साल का वनवास हो। जैसे ही उसे कान में जब बात पड़ता है कि कैकेयी ने, मेरी माता ने मुझे ऐसे घोर संकट में डाल दिया है, मेरे लिए ऐसा भौतिक संपदा इकट्ठा किया है, तो उसे वो माता बोल के नहीं पुकारते, वो उसे बोलते हैं कैकेयी, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा बहुत बुरा कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उसे लात मार के बाहर निकालते हैं, लेकिन उसे बस माता नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसे अगर वैसा करते तो भगवान श्री राम जी को दुख होगा। भगवान राम स्वयं बोलते हैं, रामचरितमानस से वर्णन है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम, राम जेहि जपु जेहि। मतलब भरत की का प्रेम भगवान के प्रति श्री राम भगवान बताते हैं कि पूरा जगत मेरा नाम जप करता है, पर मैं किसका नाम जप करता हूँ, भरत का नाम जप करता हूँ। तो वह प्रेम था भरत और श्री राम जी का। तो इस प्रकार से कि ये जो समाज है ये तभी आगे बढ़ सकता है, तभी सही दिशा में आगे बढ़ सकता है, जो जब इस समाज को जो आगे ले जाने वाले लोग हैं, जैसे कि पिता, फिर से पति, फिर से गुरु, देवता और माता, ये सब सारे लोग का नाम क्यों है, इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये अपने आश्रित हैं, पत्नी आश्रित है, पुत्र आश्रित है, शिष्य आश्रित है, पूरी प्रजा आश्रित है, राजा और देवता, उसके पूरे विश्व के लोग आश्रित हैं उस पर। ऐसे सारे आश्रितों को कहाँ कहाँ ले जीवन का परम लक्ष्य की ओर लेके जाए, वह क्या है, भगवान की भगवत भक्ति और इंद्र तृप्ति की ओर ना मोड़े। तो आज जो भौतिक आधुनिक व्यवस्था चल रही है वो सब सारा कार्य हमें इंद्र तृप्ति की ओर लेके जाता है, लेकिन प्रभुपाद इस संसार में आते हैं और वो हमें भगवान की भगवत भक्ति करना सिखाते हैं। एक बार प्रभुपाद जी किस प्रकार से गुरु शिष्य को सही रास्ता दिखाता है हमेशा, एक बार प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो उस समय उनके ज्यादा कोई शिष्य नहीं हुए थे, उस समय एकदम शुरू में आए थे। तो एक व्यक्ति उनके पास आया, बोला आप भारत से आए हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, हाँ क्या आप भी भारत से आए हैं? बोला नहीं, मैं तो यहाँ से हूँ पर मैं भारत जाना चाहता हूँ। बोलता है क्यों? वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान बहुत है, उसे सीखना चाहता हूँ, तो मेरे पास यह गीता है। तो वो अपना एक गीता दिखाता है प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है, आप इस गीता का एक पन्ना पढ़िए। तो पूरा भगवत गीता का वो एक पन्ना पूरा पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हो गया? बोलते हैं हाँ। बोलते अच्छा, अभी क्या समझा वो बताइए। तो व्यक्ति बहुत आश्चर्य हुआ कि एक्चुअली वो ज्यादा कुछ समझा नहीं उससे। तो प्रभुपाद ने जो भगवत गीता एज इट इज दी है, उसे कोई भी व्यक्ति आधा पन्ना ही पढ़ता है उसे पूरा पता चल जाता है मैं कौन हूं, भगवान क्या है, मेरा और भगवान के साथ संबंध क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। तो ये भगवान की श्री प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता यथा रूप दी हुई है वह है। जो ये व्यक्ति थे जो प्रभुपाद जी के साथ मिले थे उस समय, उनका नाम ब्रह्मानंद है। और ब्रह्मानंद जी ने भगवान श्रील प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और उनकी बहुत समय तक सेवा की। फिर जब प्रभुपाद जी संसार से चले गए तो जो इस आधुनिक संसार में बहुत सारे लोग वो भी कुछ समय से भक्ति से बाहर रहे, फिर उनको एक कैंसर हो गया और वापस से वो भक्ति में भक्तों के संग में आ पाए, भक्त लोग उनको खींच लिए। और अपने अंतिम समय में उन्होंने देखा कि वो ऐसा बोल रहे थे कि प्रभुपाद हैज कम टू रिसीव टू टेक मी टू बैक टू गॉडहेड। तो यह है गुरु, जो अपने आश्रित थे कोई, उन्हें इस जन्म में कैसे भी अगर कोई भगवान की सेवा किया है तो कैसे, और उन और गुरु हैं तो कैसे शिष्य को कैसे भी जन्म मृत्यु के चक्र से किधर से भी बाहर निकालते हैं। ये है गुरु जो कैलाश को अलग अलग जन्म में घूमते हुए भी कैसे भी वो उसे गुरु को पता रहता है मेरा शिष्य कहाँ है। तो उसी प्रकार से यह जो कर्तव्य है, बहुत जिनकी दृष्टि सही है, जो फ्यूचर देख सकते हैं। जादूगर आजकल आदमी बहुत सारा कोई जादू दिखाता है, तुम्हारा ऐसे ऐसे जादू करके आपका भूत भगा देंगे, हाँ आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप ये करो आपका यह बीमारी ठीक हो जाएगा, यह बीमारी ठीक हो, आपको पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबा अभी संसार में आ गए हैं, लेकिन क्या होता है लोगों का ध्यान उधर चला जाता है। लोग अच्छा करते हैं, बीमारी से ठीक करना अच्छा चीज है, लेकिन उसी को सर्वे सर्वा मान लेना कि शरीर को स्वस्थ रखो वही तो मेन है, और उसके लिए जो कुछ भी हो करेंगे, तो जीवन का लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो ऐसे जो गुरु हैं, जो प्रमाणिक गुरु हैं, जो कृष्ण को समझते हैं, जो कृष्ण को जानते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, वही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकते हैं। और ऐसे ऐसे जो गुरुजन हैं, ऐसे जो पिता हैं, ऐसे जो पति हैं, इनका सहारा लेके हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न तो पूछ सकते।
प्रैक्टिकली फॉलो करने पे इंस्पायर करते हैं। एक मेरा प्रश्न है, आपने एक पॉइंट बोला कि जीवन में सोल का नरिशमेंट की जैसे भूख लगती है, खाना खाते हैं और पेट भर जाता है। तो आपने बताया कि जब हम क्रोधित होते हैं तो ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं कि सोल को,
सोल भूखा है, सोल हमारी आत्मा भूखी है किस
में है। तो प्रभु जी, कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं क्या कि ना बिना, मतलब क्रोध सोल के अलावा या भक्ति के प्रोसेस के अलावा भी सॉल्व होती है, तो उस टाइम बाइफरकेशन कैसे करें कि ना ये एक्चुअली सोल का नरिशमेंट हो रहा है। जैसे बहुत सारे आप सेंटर्स या चीजें होते हैं जो एंगर मैनेजमेंट और इस टाइप के चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, जिनका भक्ति से कुछ लेना देना नहीं होता है या योगा।
ऐसा नहीं है कि एंगर का भक्ति से लेना देना नहीं है। अगर एंगर का भक्ति, क्रोध का भक्ति से लेना देना नहीं रहता तो भगवान इस हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो ग्रामर है सोचने समझने का, उसमें क्रोध एंगर जो हमारा जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो नहीं रखते। तो जो कुछ भगवान हमारे सिस्टम में रखे हैं वो लगभग सभी चीज का, लगभग सभी चीज का भक्ति में समावेश हुआ है। जैसे कि जब आप बोलते हैं कोई एंग्री हो जाता है तो एंग्री नहीं होना चाहिए, एंगर मैनेजमेंट। तो पर भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी पाद बताते हैं कि किस प्रकार से भक्त जब किसी भक्त का या भगवान का निंदा होते रहती है तो उसे क्रोधित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति, क्योंकि वह भक्त भक्ति के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है और बाहर वाला कोई व्यक्ति या कोई दूसरा कोई व्यक्ति उसको उसको गलत बता रहा है तो यह जीवन के परम लक्ष्य से भटकाना रहेगा। तो व्यक्ति को वहां पे क्रोधित होना चाहिए। रावण की लंका जलाने के लिए हनुमान जी रावण के पास प्रेम से जाके बैठे नहीं कि आप सीता मैया को वापस लौटा दो। उन्होंने रावण को ऐसा पाठ पढ़ाया कि आज भी लंका जली हुई दिखती है। तो इस सोने की लंका जला डाला। अर्जुन अगर क्रोधित नहीं होते तो बहुत सारे भीम और अर्जुन जो क्रोधित नहीं होते तो द्रौपदी को भरी सभा में जो निर्वस्त्र करने का दुर्योधन का प्रयास था वह आज घर घर में दुर्योधन फिर राजा बन जाता। अगर वो क्रोधित नहीं होते तो घर घर के लोग अपने भाई की पत्नी को निर्वस्त्र करते। तो ये जो चीज है ये भगवान ने कि भगवान के भक्तों का जहां पे और भगवान का जहां पे निरादर हो रहा है असम्मान हो रहा है वहां पे क्रोध करना चाहिए। तो क्रोध का यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से क्रोध। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा तभी संतुष्ट होती है तभी प्रसन्न होती है हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं। एक्चुअली हम अनुभव करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बटन दबाए और हम प्रसन्नता आ गया या दस दस गाइज आपस में एक दूसरे फ्रेंड्स आपस में मिले और बहुत अच्छा पार्टी किया और वो प्रसन्न हो गए। वो बस बोलने के लिए रहता है अंदर से तो अप्रसन्न ही रहते हैं। अगर ऐसा नहीं रहता तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स और पार्टीज वाले लोग आप देखते हैं आए दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका रीजन यही है कि हम आत्मा को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ?
थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।